نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت مجزہ بن ثورہ سدوسی. ہم ان کے حالات دیکھیں گے. حضرت مجزہ بن ثور السدوسی، نام دیکھیے گا، ث اور سین کا فرق ہے، قبیلوں کے نام ہوتے تھے اسی وجہ سے بنتے. ثور ان کے باپ کا نام تھا اور قبیلہ سدوس، سدیسی، جیسے امام سدیس ہیں، یہ سب قبیلوں کے نام تھے. یہ آج بھی جو امام سدیس ہیں، اصل میں یہ سدیس نہیں تھا لفظ. عرب لوگوں کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو تصغیر کرتے ہیں اس کی، جیسے حذیفی، شاطری، تو یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. جیسے بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو یا بنیا، جیسے بچے سے بچہ بچونگڑا. تو یہ سدیسی، حذیفی اور شریم اور امام سدیس، یہ سب تصغیر ہیں اصل لفظ کی. تو یہ ان کا قبیلہ تھا. ان کے بارے میں مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ کیا کہ مجزہ بن ثور ایک بہادر نوجوان ہے جس نے ایک مقابلے میں پورے 100 مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دیگر مارکوں میں ان کی تلوار سے قتل ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے. اللہ اکبر، ایک بندے نے 100 کو مارا، اور اس وقت کوئی ان کے میزائل نہیں تھے کہ میزائل سے مار دیتے. اس دور کی جنگیں دست بدست ہوتی تھیں، خود میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا. ایسا نہیں کہ خود تو انسان محفوظ بلڈنگز میں ہو اور اشارے سے دوسروں کی جان لے لے. تو جو لوگ میدان جنگ میں جا کے مارتے ہیں، یقیناً پھر وہی لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور کیا باتیں تھیں. اور یہاں خاص طور پہ اب اس حصے میں جن ساتھیوں کا ذکر آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ معروف نہیں ہے، اس لیے بھی آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے کہ جو چیزیں پہلے نہیں پڑھی ہوتی ہیں اور پھر پہلی دفعہ ملتی ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ ہیں اللہ کے برگزیدہ اور بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پر فرحاں و شادہ اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پہ رشک گناہ اور اس جیسے ایک دوسرے مارکے کا شوق دل میں سمائے ہوئے، جو کہ جاہو جلال اور شان و شوکت میں مارکہ قادسیہ کے مانند ہو، بفور شوق سے اس کے انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کسروی کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے. تو یہ تھا ان کا تعارف، اس کے اوپر آپ عنوان بھی تعارف لکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انہوں نے جنگ قادسیہ کے اندر بہادری کے یعنی جوہر دکھائے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع ملا کہ یہ اسلام کے لیے کچھ ایسے کام کر سکیں کہ ان کا نام آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم لے رہے ہیں. تو ان کی کچھ عملی چیزیں ہم دیکھیں گے. روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کتنے میں فاروق اعظم کا ایلچی یعنی قاصد، ایمبیسیڈر، مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں. پھر ایک ساتھ حرمزان، ایک شخص تھا، حرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہو. یہ شہر کا نام ہے، پہلا شخص کا نام تھا، دوسرا شہر کا نام ہے. اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسروی تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا. شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز سربراہ اور بہادر شخصوار مجزہ بن ثور سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لے. یہ حصے میں کچھ لفظ مشکل تھے، میں بھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اس کا عنوان لکھ لیجئے اہم مہم، یعنی ویری امپورٹنٹ مشن، کہ ایک ایسا کام ان کو دیا جا رہا تھا کہ جو بہت امپورٹنٹ تھا. تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یہ بات ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ مسلمان पहले जंगे कादसिया में लड़ चुके थे। ये जो ऊपर आपने देखा था कि जंगे कादसिया की गुबार झाड़ते हैं, इसका मतलब क्या था कि जंगे कादसिया हो चुकी है। इसके बाद अब के हालात हैं, कुछ लोग उस जंग में शरीक हुए और कुछ शरीक नहीं हो सके थे। इसका मतलब पूरी बात का क्या है कि जंगे कादसिया को भी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक और मौका आ गया। हजरत उमर ने मदीना से कूफा भेजा अपने एम्बेसडर को, अपने कासिद को, पैगाम रसा को, और उसने अबू मूसा अशरी के नाम ये पैगाम दिया कि अब एक और महाज है, और वो क्या है कि बसरा से आने वाले लश्कर के साथ मिल जाए। यानी आपने कुछ एड बसरा से भेजी, मुसलमानों की फौजियों की जमात। और हुरमजान असल में ये शख्स था दुश्मन इस्लाम जिसने मुसलमानों को तकलीफ दी हुई थी, और अखवास जगह की तरफ ये रहता था, तो वहाँ इसको तलाश करने के लिए भेजा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी मुसलमानों के इलाकों में। तुस्तर शहर को आज़ाद किया जाए। तुस्तर की अहमियत उस दौर में क्या थी? किसरवी ताज, किसरा क्या था, किस बादशाह का लकब था किसरा? जी कौन बताएगा? कैसर रूम का था तो किसरा ईरान का था। यानी मुराद है कि उस दौर में तुस्तर शहर जो है वो ईरानी बादशाह यानी किसरा का जो था उसका मोती की हैसियत रखता था। और सरजमीन फारस का नगीना, ये शहर बड़ा अहम था, मतलब दोनों जगह के लिए इसकी बड़ी अहमियत थी। साथ ही हजरत उमर ने ये भी नसीहत की कि मजजा बिन सौर को भी साथ ले जाए। हजरत अबू मूसा अशरी ने खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम के हुक्म की तामील करते हुए अपना लश्कर तैयार किया, और इसकी बाई जानिब यानी लेफ्ट साइड मजजा बिन सौर रजी अल्लाह अनहो को मुतयन कर दिया, और बसरा से आने वाले लश्कर इस्लाम के साथ मिलकर राह खुदा में जिहाद की गरज से चल पड़े। मुख्तलिफ शहरों को आज़ाद कराते हुए और आबादियों को कुफ्र और शिर्क की आलाइशों यानी गंदगियों से पाक करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते गए, और हुरमजान लश्कर इस्लाम से डरता हुआ दुम दबाकर भाग निकला। एक जगह से दूसरी जगह छुपते छपाते हुए बिलाखर इसने तुस्तर शहर के किले में जाकर पनाह ली। मैंने ये किस्सा इजिप्ट में पढ़ा था इनका, यानी ये हुरमजान को पढ़ते मुझे वो वहाँ की बातें याद आ गई कि किस तरीके से यानी तारीख में ऐसे दौर गुजरे हैं कि मुसलमान यानी सिर्फ कभी कभी एक शख्स को पकड़ने के लिए भी लश्कर भेजे करते थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई एक शख्स ऐसा होता है कि जो मुसलमानों की एक बड़ी जमात पे जुल्म करने का सबब होता है। तो बजाय इसके कि पूरे मुल्क पे हमले किए जाएं और कब्जे किए जाएं और बेगुनाह लोगों को मारा जाए, सिर्फ उस एक शख्स को ही पकड़ा जाता था। तो इस हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, दुश्मन इस्लाम भाग गया। अब देखिए कि इन बातों को पढ़ते हुए अगर बहुत ज़्यादा बात ना भी समझ आए ना, तो एक बात जहन में ज़रूर रखा करें कि इस्लाम किन किन मरहलों से हम तक पहुँचा और इस्लाम का मिजाज क्या है। इससे हमने जो चीज़ सीखी ये कि एक मुसलमान हुक्मरान को आंखें खोल के जीना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ नहीं सोचना या कुछ उन्हीं लोगों से बात नहीं करनी जो मुसलमानों के ऊपर हमला कर दें, बल्कि उनकी तरफ भी आंखें खोलनी है जो हमले की तैयारियों में ढके छुपे मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियां करते हैं या मुसलमानों को नुकसान देना चाहते हैं। और ये सरासर एक फितरी चीज़ है, दुश्मन का पीछा करना, उस पर निगाह रखना, ये तो इंसान की अपनी बका और उसकी आज़ादी के लिए भी ज़रूरी है, वरना तो इंसान किसी भी वक्त पे भाग जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद ये था कि अल्लाह का दीन बुलंद हो, अल्लाह की तरफ लोग आए, तो उस वक्त लगता है कि हुक्मरानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि लश्कर इस्लाम कैसा है, मुसलमानों के हालात ठीक हैं, कौन कहाँ निगाह करता है। इसके बरक्स बगैर किसी का नाम लिए अगर अमूमी तौर पे आज के दौर के हुक्मरानों के शौक और शुगल देखे जाएं तो ये नहीं दिखते। आज के दौर में लफ्ज़ सियासत का या हुकूमत का लफ्ज़ आते ही जहन में क्या आता है? पार्टीबाजी, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने, आज सदर साहब फलाह मुल्क के दौरे पे आज वहाँ ये हो रहा है, दावतें हो रही हैं, मतलब इशाइया दिया जा रहा है, कुछ इसी तरह की बातें आती है ना। यानी अमूमन अगर हम मुसलमान हुक्मरानों को भी देखें तो तस्वुर में ये आता है कि हो क्या रहा है, यानी अपनी दुनियादारी के अंदर या जाहरी चीज़ों पे। लेकिन जब मैं माजी के हालात पढ़ती हूँ और मुझे हज़रत उमर फारूक का खास तौर पर दौर दिखता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हज़रत उमर बैठे हुए अकेले और सोच रहे हैं, अच्छा मुसलमानों को कहाँ से ख़तरा है, अच्छा कहाँ इस्लाम फैल सकता है, अच्छा कहाँ के लोगों को तबलीग की जा सकती है। यानी फोकस वो था। आज के दौर में कोई भी आता है तो ये सोच ले के नहीं आता कि हमने इस्लाम को बढ़ाना है, बहुत हुआ तो बहुत ही हुआ कि अपने मुल्क में कुछ इस्लाम कर देंगे, लेकिन फैलाने वाली कैफियत नहीं रही। इसीलिए आप देखिए कि वो लोग आगे बढ़ते थे और हम दिफा करते, हम डिफेंसिव है, वो ऑफेंसिव थे। चले आगे देखते हैं। तुस्तर शहर जिसमें हुरमजान ने पनाह ली थी, ये बिलादे फारस में सबसे बढ़कर खूबसूरत, सरसब्जो शादाब और हिफाजती नुक्ते निगाह से महफूज तरीन था। ये शहर तारीखी एतबार से बहुत पुराना और तहजीब व सकाफत का गहवारा था, और सतह जमीन पर घोड़े शक्ल पर तामीर किया गया था, यानी जैसे घोड़े की शक्ल होती है उस तरह। इसे एक वसी और अरीज दरिया सीराब करता था, जिसे दरियाए दजील के नाम से पुकारा जाता था। इसके दरमियान एक जजीरे में शाह साबूर ने झील बनवाई और इसमें सरनगू के जरिए दरिया से पानी पहुंचाने का इख्तमाम किया। यानी ऐसा कुछ खूबसूरत इलाका था, आप नक्शा ही देखें कि कैसा होगा, कि देखने में वो इलाका ऐसे लगता था जैसे घोड़ा है, उसकी जगह और पानी भी है, और दरिया के जरिए वहाँ नहरें भी जारी की गई। तुस्तर की झील और सरनगी फन तामीर का नादिर नमूना तस्वर की जाती थी। इनके अंदरूनी हिस्सों में आला किस्म के पत्थर जड़े गए थे। सरनगुओं को गिरने से महफूज करने के लिए लोहे के सतूनों से सहारा दिया गया। तुस्तर के इर्द गिर्द एक दीवार तामीर की गई जो पूरे शहर को मोहित थी, जैसा कि कंगन कलाई को मोहित होता है। कुछ आ रहा है तस्वर जहन में आज के दौर के? आप देखिए कि बहुत ही कोई ऐसा इलाका कि जिसके बीच में झील हो और बिल्कुल चारों तरफ उसके इर्द गिर्द इस तरीके से दीवार बना दी जाए जैसे कंगन होता है। यानी ऐसा लग रहा है इन बातों को पढ़ने से कि बहुत सरसब्ज था, पानी भी मौजूद था, झील भी थी और बाजार भी खूबसूरत था। पत्थर जड़े हुए थे तो आप सोचिए कि बाकी और क्या नहीं होगा। मुअर्रिखीन यानी तारीख लिखने वालों का ख्याल है कि ये अपनी तर्ज की सबसे पहली और बड़ी दीवार है जो रूए जमीन पर तामीर की गई। हुरमजान ने दीवार के साथ साथ इतनी बड़ी खंदक खुदवा रखी थी जिसे उबूर करना मुहाल था, और अंदरूनी जानिब इसकी हिफाजत के लिए ईरान की बेहतरीन फौज हर वक्त चौकस रहती। मतलब इतना कीमती शहर था तो खतरा था ना कि कोई दुश्मन ना आ जाए, तो उसने शहर के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी हुई थी कि दुश्मन ना आए, और अंदर भी फौज थी। तुस्तर की इस खंदक पर लश्कर इस्लाम ने मुसलसल 1 साल 6 माह तक महाजराई की, लेकिन इस्लामी फौज इसे उबूर न कर सकी। इस मुद्दत दराज यानी लंबी मुद्दत में दुश्मन से तकरीबन 80 खून रेज झड़पें हुई, यानी जिसमें खून बहा। हर मार्का आरई की इब्तदा फरीकैन के शख्स सवारों के बाहमी मुकाबले से होती। बिलाहिर ये मुकाबला घुमसान, घुमसान क्या होता है, जैसे दू बदू, वह उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, आमने सामने लड़ाई हुई, खुमसान की लड़ाई में बदल जाता। इस जानलेवा महासराई में एक मौका ऐसा भी आया जिसमें हजरत मजजा बिन सौर रजी अल्लाह अन्हों ने वो जुरतमंदाना इकदाम किया जिससे अकल दंग रह गई, दोस्त और दुश्मन अंगुश्त बदनदां हो गए, यानी उंगलियां दांतों में दबा ली। अंगुश्त उंगली को कहते हैं, दंदान दांत से, बाब में यानी उंगलियां दांतों में। देखने वालों को वर्ताए खैरत में डाल दिया, यानी देखने वालों को हैरान कर दिया। हुआ ये कि मैदाने जंग में दादे शुजात देते हुए तन तनहा दुश्मन के पूरे 100 लड़ाके तह तह कर दिए, यानी 100 दुश्मनों के साथ जो बहुत लड़ने वाले थे, बहादुर थे, उनको इन्होंने तलवार से मारा। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर दुश्मन की फौज में लर्जा तारी हो गया और हर एक के दिल में इनके रोब और दबदबे की धाक बैठ गई। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। इस मुखय्यरुल अकुल, इसका मतलब होता है कि अकल को हैरान करने वाला, इस अकल को हैरान करने वाले वाक़े को देखकर सभी को इसका इल्म हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ने लश्कर इस्लाम में शमूलियत के लिए इस मर्द मुजाहिद का इंतखाब क्यों किया। इसका उन्वान लिखिए, उमर बिन खत्ताब की फरासत। इसमें बहुत सारी बातें, आप देखिए कि खूबसूरत शहर था और बादशाह जो था वो उसी शहर के अंदर चला गया क्योंकि उसको लगा कि यहाँ मैं महफूज होऊंगा। चारों तरफ खंदक भी थी और पूरी तैयारी के बावजूद मुसलमान दबे नहीं, पीछे हटे नहीं, और 1 साल 6 महीने तकरीबन 1.5 साल तक वहाँ काम किया, वहाँ रुके। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ हालात में कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिस पे थोड़ा टाइम लगता है। कुछ जंगें तो रात और दिन में ही पूरी हो जाती थी, लेकिन कुछ के लिए बहुत साल इंतजार भी करना पड़ता था। लेकिन मुसलमान उस वक्त पीछे नहीं हटे, और हजरत मज्जा बिन सौर जो हैं, इनका मामला जो था वो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से इन्होंने इतने लोगों को मारा और किस तरीके से हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती कि बाज़ दफ़ा एक शख्स भी पूरी जमात पे भारी होता है। एक शख्स के अंदर वो खूबी होती है जो बहुत सारों के अंदर नहीं हो सकती। एक अच्छे लीडर की फहमो फरासत भी समझ में आती है कि उसको हमेशा इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि कौन क्या काम कर सकता है। बाज़ दफ़ा लोग थोड़े होते हैं लेकिन काम करने वाले होते हैं, और ठीक बंदे को ठीक काम दिया जाता है तो वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो गैर मुनासिब काम दे दिए जाते हैं वो काम भी नहीं करते और परेशान भी रहते हैं। कभी भी किसी को काम दिया जाए तो उसके लिए इंसान को ये देख लेना चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूँ उसका शौक किस काम में है, उसका रुझान क्या है और वो कर क्या सकता है। फिर इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी कि दुश्मन की फौज में लर्जा तारी हो गया। जब एक शख्स ऐसा कारनामा अंजाम देता है तो बाज़ दफ़ा पूरे के पूरे लोगों की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहा होता है अपने लश्कर की। आगे देखते हैं, इन 80 यानी 80 खून रेज मार्कों में से एक आखिरी मार्के में मुसलमानों ने अपने दुश्मन पर ऐसा जोरदार हमला किया जिससे ईरानी फौज के पांव उखड़ गए और वो इस हमले की ताब न ला सकी। बिलाखिर खंदक का मुहासरा तर्क करके ईरानी शहर के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए और उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए। यानी अब एक ऐसी कैफियत बन चुकी है कि मुसलमान किले तक पहुंच गए हैं जो उसके अंदर था। फौज जो थी वो शहर को छोड़ के अब अंदर चली गई, यानी वो खंदक जो थी, जो एक डीप सी यानी समझे के डिच उन्होंने बनाई हुई थी, उसको भी मुसलमान अबूर कर गए। तो इसका भी उन्वान यही लिख लीजिए, दुश्मन के पांव खड़ गए। क्यों खड़ते थे? क्योंकि मुकाबले पे ऐसे लोग थे कि जिनकी निगाहें अल्लाह पे लगी हुई थी और वो जो काम करते अल्लाह सुबहान तआला की रहनुमाई में करते थे, कुरान और सुन्नत से अपने लिए रहनुमाई लेते थे, मनमाने काम नहीं करते थे, दुश्मन से लड़ते थे तो अपने हर तौर तरीके से दुश्मन के तौर तरीकों को बुरा करते थे साबित। ऐसा नहीं था कि कल्चर और तरीके इनके पसंद करें और दुश्मनों से लड़ने जाएं। ऐसे लोग कम ही लड़ते हैं और लड़के भी कुछ पाते नहीं। कितना अजीब लगता है ना कि इंसान दिन भर किसी से लड़े और रात को उसी के कल्चर को देखे, उसी के तौर तरीकों को देखे। ये कॉल और फेल का तजाद है जो मुसलमानों को फिर जीतने नहीं देता और फतह हासिल नहीं होती और इंसान फिर कई जानों को मरवाने का सबब बनता है। अगर मुसलमानों के अंदर आज भी वही जज्बे पैदा हो जाएं जो उस दौर में थे तो इस्लाम आज भी वही है जो आज से पहले था। आगे देखते हैं, इस ताज़ा तरीन हालात में मुसलमान मजीद संगीन हालात से दो चार हो गए। हुआ ये कि ईरानियों ने किले के बुर्जों से तीरों की बौछार कर दी और किले की बालाई जानिब से यानी ऊपर की जानिब से उन्होंने ऐसे जंजीर फेंके जिनके सिरों पर आग से गर्म की गई शोला नुमा कुंडियाँ नसब की गई थी। लश्कर इस्लाम में से अगर कोई मुजाहिद दीवार पर चढ़ने लगता या इसके करीब आता तो वो फौरन दहकती हुई लोहे की कुंडी इसके जिस्म में पेवस कर देते और इसे इंतहाई तेजी से ऊपर खींचना शुरू कर देते जिससे इस मुजाहिद के जिस्म के पर खच्चे उड़ने लगते और वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ देता। हर दौर में आप देखिए कि दिफा के तरीके रखे गए और लोहे की जंजीरें गर्म करके फेंकते थे कि कोई इसको ले ही ना सके और करे ना। तो इसको आप लिख लें कि दिफा का अनोखा तरीका। इस नाजुक तरीन सूरत हाल से मुसलमानों के मसाइब में बेपनाह इजाफा हो गया तो इंतहाई दर्दनाक अंदाज में बारगाहे इलाही में गिड़गड़ा कर दुआएं मांगने लगे, खुदाया हमें अपने फजलो करम से दुश्मन पर गलबा अता फरमा। जी, क्या उन्वान होना चाहिए इस हिस्से का? जब अपने मीन्स कम होने लगते हैं ना तो फिर अल्लाह की तरफ नजरें लगती हैं और हाथ दुआ के लिए उठ गए। और यही राज था मुसलमानों के जीतने का कि जहाँ असबाब की कमी होती तो वहाँ अल्लाह के साथ ताल्लुक को बढ़ा लेते। आज भी यही हल है मुसलमानों के लिए। हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हो हसरत व यास की तस्वीर बने किले की दीवार की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। अचानक इनके सामने एक तीर गिरा जिसके साथ कुछ बंधा हुआ था। आपने आगे बढ़कर तीर उठाया, इसके साथ बंधी हुई चीज को खोला। क्या देखते हैं कि एक खत है जिसमें ये तहरीर था, ए फर्जंदान इस्लाम, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है कि तुम इफाए अहद की पाबंदी करते हो, यानी वादे को पूरा करते हो। मैं तुमसे अपनी जान, माल, अहलो अयाल और चंद एक रुफका के लिए पनाह तलब करता हूँ। इस एहसान के बदले में तुम्हें एक ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगा जिसके जरिए तुम इस शहर में दाखिल हो सकते हो। ये पढ़कर हजरत अबू मूसा अशरी के चेहरे पर रौनक के आसार नुमाया हुए। जान और माल की पनाह का परवाना लिखा और इसी तीर के जरिए किले की इस सिमत फेंक दिया जहां से तीर नीचे फेंका गया था। इसने तीर उठाया, खत खोलकर पढ़ा तो इसने इत्मीनान का सांस लिया, इसलिए कि वो जानता था मुसलमान वादे के सच्चे होते हैं। वो बेखतर किले की दीवार के साथ सिरकता हुआ नीचे उतर आया और लश्कर इस्लाम के सिपा सलार हजरत अबू मूसा अशरी की खिदमत में हाजिर होकर अपनी दास्तान गम सुनाते हुए अर्ज की कि मैं ईरान के सरबराह खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। ईरानी जर्नैल हुरमजान ने मेरे बड़े भाई को कत्ल कर दिया, इसके मालो मता को लूट लिया और अहलो याल को जुल्म सितम का निशाना बनाया। मेरे मुतल्लिक भी इसका दिल साफ नहीं, मेरे खिलाफ वो बड़े घनौने मंसूबे बनाता है। मेरी जानो माल को इससे हर वक्त खतरा लाहक रहता है। हकीकत यह है कि मैं इसके जुल्म सितम की बजाय आपके अदलो इंसाफ को और इसकी बदहदी की बजाय आपके ईफाए अहद यानी वादे पूरे करने को तरजीह देता हूँ। मेरा दिली इरादा है कि मैं आपको वो खुफिया रास्ता बताऊँ जिसके जरिए इस्लामी फौज के सपूत यानी सिपाही बेटे तुस्तर शहर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे हमरा एक साथी को रवाना करें जो बयक वक्त जुर्रत व शजात और होश व खिर्द में यद तूला रखता हो। होश होश को कहते हैं, हिर्द अकल को कहते हैं, यद हाथ को कहते हैं, तूला लंबे को। मुराद ये कि सिर्फ बहादुर ही ना हो, समझदार भी हो और इसके साथ साथ वो तैराकी का माहिर भी हो, यानी उसको स्विमिंग आती हो, तैराकी का माहिर भी हो, ताकि इसे मेरे साथ खुफिया रास्ता अबूर करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। क्या उन्वान होना चाहिए इसका? ठीक है, कुछ ने इफायत को सोचा, कुछ ने दुआ को सोचा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह सबब बनाता है। दुआएं जब उठती हैं तो उस वक्त कुछ भी नहीं कि उनके घर से उनका दुश्मन आ गया, यानी अल्लाह ताला पे जब बंदा तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। तो इसका उन्वान लिखते हैं वमई यतवक्कल अलल्लाह, अरबी है लेकिन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। आप देखिए कि इसबाब जहाँ ख़त्म होते हैं या कम होते हैं ना, वहाँ अल्लाह की मदद, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह से मांगना इंसानों को मजबूत करता है। इसी आयत में आगे भी आता है कि वह यरज़ुक्हु मिन हैसु ला यहतसिब, और मदद वहाँ से आ गई जहाँ से गुमान नहीं था। ये भी आप इसका उन्वान लिख सकते हैं, मदद वहाँ से आई जिसका गुमान नहीं था। और ऐसे ही होता है, अगर मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाए ना, तो यकीन करें कि आपको अपने घर से नहीं दूसरों के घर से हमायती मिल जाएंगे। सूरह यूसुफ में भी हम पढ़ते हैं ना कि वह शहीद शाहिदों में नहलीहा, कि यूसुफ सच्चे थे, बेगुनाह थे, तो उस औरत के घर वालों में से ये गवाह पैदा हो गया यूसुफ के हक में। तो लिहाजा इंसान अपने आप को सच्चा रखे। कुछ बातें इसके अंदर से हम देखेंगे। अबू मूसा अशरी सरदार थे, लीडर थे, गवर्नर थे, लेकिन खुद मौके पे मौजूद थे। इससे क्या पता चलता है कि चीफ्स और कमांडर्स सिर्फ बंद कमरों में बैठ के हुक्म ना दें, बल्कि वो भी मैदान जंग में आके असल सूरत हाल को देखें। दूसरी बात, हसरत व यास, इंसान बास दफा हालात की तंगी की वजह से मायूस हो सकता है, इससे ईमान में फर्क नहीं आता, ये फितरी बात है, लेकिन ये मायूसी या हसरत ज्यादा देर की नहीं होती। चंद लम्हे के बाद अल्लाह ताला खुद बहुत कुछ ना कुछ उनके लिए हालात बदलवा देते हैं। अगली बात आप देखिए कि उस दौर में पैगाम रसानी का तरीका क्या था, तीर के जरिए खत भेजे जाते थे। आज भी शायद स्कूलों कॉलेजों में लोग इस तरह करते होंगे, लिख के कुछ चीज़ उसके अंदर डाल के तो रुका भेजते हैं, चिट भेजते हैं। तो बहरहाल एक तरीका है, इस पर भी आप गौर कीजिएगा। फिर आप देखिए कि इन्होंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ खत है और उसको खोल लिया, और वो असल में किले के अंदर से किसी ने फेंका था, और वो शख्स कौन था जिसको आपने देख लिया कि जो खुद उस बादशाह के जुल्म का शिकार हो चुका था। तो इससे एक और बात क्या पता चलती है कि जब बंदा मोमिन हसरत और यास के साथ होता है तो अल्लाह ताला उसको ज्यादा देर उस हालत में नहीं रखता। और मैं जब ये जुमला पढ़ रही थी ना कि हसरत और यास की तस्वीर बने किले की दीवार की तरह टुक टुकी बांधे देख रहे थे, यानी मुसलसल देख रहे थे, तो मुझे अलामा इकबाल का वो शेर भी याद आ रहा था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। यानी उनको उसी दरवाजे को देखना था और अल्लाह ताला ने उस दरवाजे को खोलने के असबाब पैदा कर दिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें वही बात जो आप सबने भी मेंशन की कि मुसलमानों का अच्छा करेक्टर, उनका वादे को पूरा करना एक दुश्मन को इनकी तरफ ला रहा है जो अपनों को छोड़ के इनकी तरफ आ रहा है। और अगर आज मुसलमान वादों के पक्के ना हो, कमिटमेंट ना हो, तो फिर क्या कहेंगे आप? इस पे भी गौर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक और चीज़ पता चलती है कि जुल्म इंसान को उसके साथियों से महरूम कर देता है। आप किसी पे अगर जुल्म या ज्यादती करेंगे ना, तो आपके अपने लोग भी आपके नहीं रहेंगे, वो भी गैरों के बन जाएंगे। फिर एक और चीज़ पता चली कि जुर्रत और शुजात के साथ होश और अकल की भी जरूरत होती है। बाद लोग बहादुर बड़े होते हैं, जज्बाती होते हैं, उनका दिल करता है हम हर वक्त लड़ते रहे, जरा सी बात करो उनको लड़ा लो, लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो अकल की भी जरूरत होती है, और अल्लाह ताला हम सबको ये दोनों चीज़ें दे दे मुसलमान होने के नाते। और एक और चीज़, स्विमिंग की भी बात हुई, तैराकी का भी माहिर हो। बास जंगे ऐसी थी जहाँ दरियाओं में तैर के जाने बचाई गई। तो इससे क्या पता चलता है कि फौजी ट्रेनिंग के अंदर ये भी एक अहम चीज़ है कि वो स्विमिंग आती हो। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हों ने हज़रत मज़ा बिन सौर को अपने पास बुलाया और इनसे रासदाराना अंदाज में बात की और फरमाया, मुझे अपनी कौम से एक ऐसा शख्स दें जो बयक वक्त दानिशमंद, मुहतात और तैराकी का माहिर हो। हज़रत मज़ा रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा, मुझे ये खिदमत सौंपे, मैं इंशाल्लाह इसे बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू मूसा अशरी ने इरशाद फरमाया, अगर आप ये खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला बरकत करेगा। इन्हें इस मिशन पर रवाना करते हुए फरमाया, रास्ता अच्छी तरह याद कर लेना, किले के दरवाजे की जगह अच्छी तरह निशान जदा कर लेना, हुरमजान जिस जगह बराजमान होता है यानी बैठता है वो भी जहन नशीन कर लेना, साबित कदमी का सबूत देना, और इसके अलावा कोई और काम न करना। अल्लाह अकबर। जी, तो आप लिखिए इसको उनवान, अच्छा लीडर वक्त से पहले खतरे से आगाह करता है। इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं अपने लफ्जों में, लेकिन इस हिस्से का जो थीम है वाकई वो अबू मूसा अलशरी की जहानत है। कितने खूबसूरत तरीके से नसीहतें की, और आप देखिए कि उन्होंने भी खामोशी से सुन ली। से क्या पता चलता है कि जब आप किसी को किसी काम पे असाइन करें तो साथ नसीहत करनी चाहिए, और जो किसी काम पे अपने आप को पेश करे उसको भी आजिज़ी के साथ सुन लेना चाहिए। बाज़ लोग नहीं सुनते, बाज़ लोग सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, वो सुनने को तैयार भी नहीं होते। ऐसे लोग फिर कहीं ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं कि जहाँ फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर दूसरी चीज़ इस हिस्से से जो पता चलती है वो क्या है कि जब बंदा किसी मिशन पे जाता है तो वापसी का रास्ता तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुशी खुशी चले जाते हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं पता होता, तो बाज़ दफ़ा जाते हुए तो वक्त पे पहुंचते हैं लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। फिर इसमें एक और चीज़ भी, अब देखिए कि जो उन्होंने ये बात कही कि जहाँ पे बादशाह बैठता है उसको भी जहन नशीन करना, यानी उनकी नज़रें थी इस बात पे कि अगर हम हमला करते हैं तो हमें इनके हुरमजान को तो पकड़ने आए थे ना, यानी उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा। किला या बाकी जगहों की मोहब्बत में या उस शहर को पकड़ने की बजाय उनकी निगाहें उसी पे हैं जिसका हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दिया। और इससे वाकई अबू मूसा अशरी की फ़िरासत का भी अंदाज़ा होता है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की भी खूबी मालूम होती है कि जब किसी को असाइन करते थे तो उसमें वाकई को खूबी होती थी तो वह असाइन करते थे। आगे देखते हैं, हज़रत मज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो रात की तारीकी में अपने इस ईरानी भाई के हमरा ये ख़तरनाक मुहिम सर करने के लिए चल पड़े, तो वो दोनों ज़ेरे ज़मीन एक ऐसी सुरंग में दाखिल हुए जो दरिया और शहर के माबैन यानी दरमियान दिफाई नुक्ते निगाह से खोदी गई थी। सुरंग कहीं से तो चौड़ी थी जहाँ पानी में चलना मुमकिन था, और कहीं से वो बहुत तंग थी तो वहाँ तैरना पड़ता। اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے. بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا. ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو میرے بھائی کا قاتل حرمزان بیٹھا ہوا ہے, اور وہیں سے قلعے کا بغور جائزہ لیا. جب حضرت مجذر رضی اللہ عنہ ایرانی سپہ سالار حرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے, لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وصیت کا خیال آیا. کیا وصیت تھی؟ کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا. تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے, اور طلوع فجر سے پہلے وہاں پہنچ گئے جہاں سے اس مہم کا آغاز کیا تھا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو روداد سفر سنائی, یعنی سفر میں جو کچھ پیش آیا, اور اس پر خطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا. جی, حقیقت یہ ہے کہ بے مثل اطاعت. کیا مشکل تو وہاں سے ایک تیر مارتے اور اس کو مار دیتے. جذبات پہ قابو, جوش نہیں ہوش, یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا, یاد کریں وہ شروع میں بات, کہ جو صرف بہادر ہی نہ ہو سمجھدار بھی ہو. تو جوش نہیں ہوش, اسی کی ضرورت ہے ہر ایک دور میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی تو میں یہ پڑھتے ہوئے مجھے خود خوف آ رہا تھا, کہاں پانیوں میں سے چل رہے ہیں, اندھیروں میں جا رہے ہیں, اندر زمین ہے, سرنگ ہے, کہیں پانی آ رہا ہے. آج کے دور میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ یعنی اسلام کی حفاظت کس کس طریقے سے ہوئی, اور اگر آج اسلام ایسی ایسی جگہوں میں پھیل چکا ہے جہاں پہ پہلے نہیں تھا, تو اس میں دیکھیے کتنی قربانیاں دی گئیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی, اور یہی اس میں سے ایک فتح کی ایک کہانی ہے یہ. اگر یہ سب نہ کرتے تو آج وہاں اسلام نہ ہوتا. کئی لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی, اپنے آپ کو مشکلوں میں رکھا, جان ہتھیلی پہ رکھی, پھر اسلام پہنچا. تو آج اسلام ایسے پہنچ جائے گا؟ ہمیں تو تلواریں نہیں اٹھانی پڑتی, ہمیں تو صرف قدم ہی اٹھانے پڑتے ہیں. آج اسلام کو اگر ہم پیش کرتے ہیں یا لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں, تو ہم بھی کبھی کسی تنگ راستے سے گزرے, کبھی ہمیں بھی پانیوں میں سے گزر کے اسلام کے لیے جانا پڑا. سوچئے گا, مجھے تو ان باتوں کو پڑھتے ہوئے پھر ایک دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ اسلام کی ہر دور میں قیمت چکائی لوگوں نے, اس دور میں جنگوں کے ذریعے, آج کے دور میں اسلام کا, اللہ کا, رب کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ مشکل کرنی ہے. اگر ہم نہ پہنچیں گے تو وہ تو محروم رہ جائیں گے. اب دیکھیے کیا بڑی بات ہے, ایک حرم زانتا چھوڑو, نہیں ضرورت اس کی, چلتے ہیں آگے, تھک گئے ہیں بہت دن سے, حکم دیا یہ کام امپاسیبل ہے. کتنا کچھ کہہ سکتے تھے حضرت عمر کے بارے میں, لیکن خاموش اطاعت. اور کتنی پیاری اطاعت ہے اس میں حضرت مجزا کی. ایسے ہی لوگ جیتے ہیں جو لوگ خود سری کرتے ہیں نا, جو امیر کی بات نہیں مانتے, جو لیڈر کی بات نہیں مانتے, پھر وہ لوگ کہیں جا کے مشکل میں پڑتے ہیں. یا تو راستے الگ ہو جاتے ہیں, یا پھر اپنے ساتھ ساتھ پورے لشکر کے لیے خرابی کا سبب بنتے ہیں. اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل, طاقتور, سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے, اور حضرت مجزہ بن سور رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا, اور اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے یہ خصوصی ہدایت کی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا. حضرت مجزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیب تن کریں, ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا, کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں, اور تلوار قمیض کے اندر کی جانب اپنے بدن سے باندھ لے. ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل نکلے. اللہ اکبر, یہ ہوتے ہیں سرفروش. کتنی مشکل گھاٹیوں سے گزرے, پھر اسلام کا دفاع کیا. کتنی جرت ہوتی تھی ان کے اندر. اس کا عنوان یہی لکھیے, سرفروشان اسلام, یعنی اسلام کے راستے میں سر کٹانے والے 300 لوگ اس لشکر سے نکلے. پہلی چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر لشکر کے اندر سب لوگ ایک ہی جیسے ایمان والے نہیں ہوتے, ایک ہی کیلپر کے نہیں ہوتے, کسی بھی گروہ کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. वो इल्म की महफिल हो, वो मैदाने जंग हो, या काम करने का कोई और मौका। अच्छा लीडर कौन होता है कि लोगों को पहचाने। जो लोग अच्छे काम कर सकते हैं उनको मौका देना चाहिए, और जो लोग कमजोर होते हैं उनको ताना नहीं देना चाहिए बल्कि उनको हल्की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो हिदायत थी कि शहर में दाखिल हो जाओ तो नारे तकबीर कहना, ये कौन कहता है जिसके दिल में अल्लाह अकबर होता है। ये नहीं कहा कि अपनी नाम लेना, कोई अपनी बड़ाई करना, फलां जिंदाबाद फलां जिंदाबाद, बल्कि अल्लाह का नाम। और यही नारा है जिसको बुलंद होना है। अल्लाह की ज़ात बड़ी होगी तो ये नारा आसानी से ज़ुबान पे आ जाता है। फिर आप देखिए कि इनकी कितनी बड़ी समझदारी की बात है कि हल्का लिबास पहनो, क्योंकि जिनको भागना होता है ना वो हल्का लिबास पहनते हैं। कहीं ऐसा मुश्किल वक्त ना आए कि अपने लिबास के बोझ की वजह से रास्ता मुश्किल हो जाए। हमारे साथ तो नहीं ऐसा कभी होता? कहीं हमारे लिबास बोझल या लिबास की वजह से या अपनी दुनिया के झंझटों की वजह से हम भी बोझल हो के रुक तो नहीं जाते अल्लाह के रास्ते में चलने से, और रात के अंदर जा रहे हैं? मुझे तो खौफ आ रहा है। आप जरा तसव्वुर में करें, ऐसे लग रहा है जैसे किसी पाइप के अंदर जा रहे हैं। पानी भी है, अंधेरा भी है, रात भी है, और दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। कितने खौफ होंगे, कितने ही लम्हे नहीं आते होंगे उनकी जिंदगी में भी कि जहाँ पे वो लोग गिव अप कर दें, छोड़ो नहीं होगा, नामुमकिन है। कोई बड़े बड़े उस वक्त हथियार नहीं थे, कोई बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला कैसे फिर इनसे काम कराता था। हजरत मज़ा बिन ज़ौर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों को लेकर गार में दाखिल हुए तो पानी खौफनाक अंदाज में पूरी तेजी से बह रहा था। ये सब पुरेसरार बंदे अपने खुदा का नाम लेकर इसमें कूद गए, इस दुश्वार गुजार रास्ते को अबूर करने के लिए पूरी जुरतमंदी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। हर एक मुजाहिद अपने गिर्दो नवाह से बेनियाज होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था। जब चंद साथी हजरत मज्जा की क्यादत में सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या देखते हैं कि पानी की बेरहम मौजों ने इनके 220 अफराद को अपना लुकमा बना लिया। 220 मर गए और सिर्फ 80 अफराद इसे अबूर करने में कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर। हजरत मज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और इनके हमरा 79 यानी 79 अफराद ने किले के अंदर कदम रखते ही अपनी तलवारें फिजा में लहराई और यकदम किले के मुहाफिजों पर हमला कर दिया, और आने वाहत में यानी एकदम इन्हें तहे तहे कर दिया और किले का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। दरवाज़ा खुलते ही नारे तकबीर बुलंद किया। जब ये आवाज़ किले के बाहर लश्कर इस्लाम ने सुनी तो तमाम मुजाहिदीन ने जज्बा इस्लाम से सरशार होकर पुरजोर अंदाज में नारे तकबीर बुलंद किया और तलुए फजर के वक्त शहर पर हल्ला बोल दिया। घमसान की जंग छिड़ गई। जंगी तारीख में कम ही इस जैसे हौलनाक मंजर देखे होंगे जिसमें लाशों के अंबार लग गए। इसका उनवान तो वाजे ही है, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे। ऐसे ही लोगों के अलामा इकबाल ने नज़म कही है ना, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ सिमट कर इनकी हैबत से राई। पहाड़ राई बन जाते थे इन मुसलमानों की हैबत से, आज राई पहाड़ दिखती है हमें, एक भी तो नहीं दिखता ऐसा आज के दौर में। पानी के अंदर कूद गए, बेखतर कूद पड़े, पानियों के अंदर जाके जान की कुर्बानियां देने वाले, जहाँ कोई अवार्ड देने के लिए तैयार नहीं था, किसी का नाम नहीं था, कोई टाइटल नहीं मिलने वाला था, ये काम कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई आ चुकी हो। और अब देखिए 300 में से 220 मर गए, पीछे क्या बचे? मुट्ठी भर हौसले फिर भी नहीं टूटे, फिर चल पड़े। हम हो तो गम मनाने लग जाएं, बहुत मुश्किल है। अब देखिए मकसद लोगों को जीता रखता है और मकसद लोगों को जोड़ के भी रखता है। जब हमारे मकसद बदलते हैं ना तो हमारे रास्ते बदल जाते हैं। ये लिख लें, मकसद की हमाहंगी लोगों को जोड़ के रखती है। प्रायोरिटाइज कर लेते हैं आप चीज़ों को। जब मकासिद इस्लाम होते हैं, अल्लाह के दीन का काम होता है, तो इंसान जुड़ जाता है, और जहाँ ज़ात या अपनी बड़ाई या किसी और की बड़ाई आती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। आज भी मुसलमान बहुत सारे हैं, आज भी बड़े महाजों पे जंग लड़ी हुई है, लेकिन मकासिद बदल गए। हिया कलिमतुल्लाहिल उल्या की बजाय कुछ और चीज़ें बीच में आ गईं, और अल्लाह को आमेज़िश पसंद नहीं है। कैसे नारे तकबीर बुलंद हुआ और लोग बाहर से अंदर आए। वो ऐसे इलाकों को फतह करते थे जैसे हम अपने आप को फतह करते हैं, अपने घरों को, अपनी जात को बड़ा करते हैं। उनके लिए अल्लाह का नाम इतनी बड़ी चीज़ थी जैसे शायद आज हमारे लिए अपनी जात बड़ी हो गई। शहर के गली कूचों और किले के अंदरूनी मैदान में लड़ाई पूरे जोरों पर थी कि हजरत मज़ा बिन थौर रज़ी अल्लाह अन्हों ने ईरानी फौज के सिपह सलार हुरमज़ान को मैदान में बरसरे पेकार देखा तो इसकी तरफ बढ़े। लोगों के हुजूम की वजह से वो आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब वो दोबारा सामने आया तो आपने इस पर हमला कर दिया, लेकिन आपकी तलवार का वार खता गया। हुरमज़ान ने वार किया जो ऐन निशाने पर लगा, जिससे लश्कर इस्लाम का ये बितले जलील मैदान जंग में शहीद होकर गिर पड़ा। लेकिन आंखों में चमक और चेहरे पर सरूर के आसार नुमाया थे। बिला ये कैफियत इस अजीम कारनामे की वजह से थी जिसे अल्लाह सुबहान तआला ने सर अंजाम देने की इन्हें सआदत बख्शी। जंग बदस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह सुबहान हुआ तआला ने मुसलमानों को फतह और नुसरत से नवाजा और दुश्मन फौज का सिपह सलार हुरमज़ान इनके हाथों गिरफ्तार हो गया। इसका उन्वान लिखिए, जान दे दी मकसद ना छोड़ा। ऐसी कुर्बानियों वालों के नाम बाकी रहते हैं ना, पीछे ना हटे। आप देखिए कितनी मुश्किल हुई होगी ना, और किस तरीके से वो लोग निकलते थे और रास्तों में जाते थे और इस तरीके के काम करते थे। अगला इस सभी साथी पढ़ लेते हैं। फतह हासिल करने के बाद मुजाहिदीन का काफिला हुरमज़ान को अपने हमराह लेकर मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुआ ताकि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हों को फतह की खुशखबरी सुनाए। जब हुरमज़ान को अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश किया तो इस वक्त इसने शाही लिबास पहन रखा था और इसके साथ साथ फतह की बशारत देने वाले मुजाहिदीन एक ये भी खबर लेकर आए कि इनका एक बहादुर सख्त जान और सब्र व तहम्मल का पैकर साथी मज़ा बिन थौर मैदान जंग में जामे शहादत नोश कर चुका है। अल्लाह, इसका उन्वान लिखे है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। करिए ज़रा इसको आज अपने हालात के मुताबिक डिस्कस। आज वो माएँ हैं और आज वो बेटे हैं और आज इस्लाम के लिए ये कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं। आप देखते हैं कि इस वक्त इनफरादी तौर पे लोग मुसलमान होते हैं ना, वन ऑन वन बेस पे आप सुनते हैं फलां कन्वर्ट हुआ, इतने लोग मुसलमान हुए, जबकि सहाबे कराम के दौर में बस्तियां और इलाके मुसलमान होते थे, कौमें आबाद होती थी, एक एक कबीला पूरा मुसलमान हो जाता था। एक किला फतह हुआ, पूरा शहर मुसलमान हो गया। क्या पता चलता है कि जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हमारे अंदर ईमान होगा, उतना इस्लाम तेज़ी से फैलेगा। ये ऐसे ही है जैसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो देर से गलेगा, कम पकेगा, तेज़ आंच होती है तो जल्दी पकता है, जल्दी जलता है। जब मुसलमानों के सीनों में ईमान की शम्मा जलती है ना, ईमान की रोशनी होती है और उनके एक आग लगती है तो इस्लाम तेज़ी से फैलता है। जब ईमान की शम्मा बुझने लगे या आग ठंडी होने लगे तो इस तरह चीदा 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 लोग मुसलमान होते हैं। हम आज इस पे भी खुश होते हैं कि मुसलमान हो रहे हैं लोग, कन्वर्शन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद देखें कि जो लोग अभी इस्लाम से दूर हैं वो ज़्यादा है। अगर उन तक इस्लाम पहुंचाना है तो हमें वही तौर तरीके, वही काम करने होंगे जो के सहाबे कराम के थे। आज हमने खुद को अपनी औलाद को आराम तलब बना दिया, बस अपना आरामदेह बिस्तर, एयर कंडीशनर, खाना पीना और बस। अल्लाह ना करे कोई आलमी जंग लग जाती है मुसलमानों के खिलाफ, छोटी छोटी तो लगी हुई है ना, आलमी जंग लगती है, सारे गैर मुस्लिम मिलके सारे मुस्लिम मुल्कों पे हमला कर देते हैं, जिस मुसलमान को जहाँ देखो पकड़ लो, क्या है हमारे हाथ में दिफा के लिए? वो बच्चे जो 4 कदम नहीं चल सकते, जिस्म इतने मोटे हो गए कि घर में बैठ के ऊँगना उनको पसंद आता है बाहर वॉक करने से भी। इल्ला माशाल्लाह, कुछ अच्छे भी होंगे, बात तो सिर्फ अमूमियत की होती है, लेकिन क्या आज माओं की तरबियत में ये चीज़ शामिल है? कोई आखिरी दिन, कोई आखिरी जुमला जो बच्चों को ये माँ ने बैठ के बताया कि बेटा अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम आगे बढ़ने वालों में हो। वो अस्मा थी जो बेटे को कहती थी कि बेटा मुझे ये ना पता चले कि तूने मैदान जंग में पुश्त पे तीर खाया, यानी तू भाग रहा था तो पीछे से लग गया, मुझे खुशी उस दिन होगी जब पता चलेगा कि मेरे बेटे ने सीने पे तीर खाया है। और वाकई जब उनके बेटे की शहादत हुई तो वो माँ ये टटोलती भी गई कि मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ। देखा कि दुश्मनों ने सूली पे चढ़ाया हुआ था तो खुश होके कहने लगी, मेरा बेटा जिंदगी में भी ऊपर था और मरने के बाद भी इनसे ऊपर रहा। पहले की माओं का हाल क्या होता था कि दूध पिलाते हुए भी बच्चों को अल्लाह की बातें करती थी, चांद दिखाती थी, सूरज दिखाती थी और उनके दिल में ईमान का बीज डालती थी। अगर बच्चा 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अगर बाले होने के बावजूद वह रोज़ा रख ही नहीं सकता तो वो दुश्मनों के आगे कुछ नहीं करेंगे। फिर उनको मत बताइए, वो उल्टा ही असर होगा। पहले असल रूह दे। हमारा हाल क्या है कि हमारा पूरा सेटअप बिगड़ा हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ना। जब आप इधर से उधर, उधर से उधर लॉस्ट होते हैं ना, तो पहली चीज क्या होती है कि पहले मेन रोड पे आइए। कहीं भी आप लॉस्ट होते हैं तो जब आप किसी को बताते हैं ना, मैं यहाँ घूम रही हूँ, इधर हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, वो क्या है, तो फिर जो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है अपने घर की, वो कहता है अच्छा आप ऐसा करें, वो फला मेन रोड पे आप आ जाए, मैं वहां आ जाऊंगा, या फला स्टोर है वहां आप आ जाए, कोई मशहूर जगह, जहाँ एक जगह पे तो आप लगे। इस वक्त हम लोग रोटेट हुए हैं। हमें बच्चों को सही रखने से पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। हमारा अपना आप गलत होगा, अपनी तबीयत ठीक नहीं होगी, अगर हम खुद अपने मामले को सही नहीं करते बच्चों को कैसे कहेंगे। और यकीन करें कि आज घर घर की ये कहानी है, हम अल्लाह की नहीं मान रहे ना तो हमारी औलादें हमारी नहीं मानती। डिप्रेशन है, घबराहट है, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि मैं वाकई दिल में इस दर्द को महसूस करती हूँ कि दवा इधर है, लोग कहाँ जा रहे हैं। घबराहट है, दिल परेशान है, बेचैन है। मैंने कहा क्यों है ऐसा? आप सोचें, आप ये करती हूँ, कहती ये भी करती हूँ, आप दुआएं सुबह शाम की पढ़ते हैं, ये भी पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हैं, पढ़ती हूँ, खराबी क्या है? फिर मैंने और डिटेल पूछी, रो रही थी, यानी किसी से बात हुई तो बकायदा बेचारी परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या, और दिस एंड दैट। तो मैंने उनसे बहुत पूछा खुल के, मैंने कहा आप बताएं, सारी चीज़ें कह रही, नमाज भी पढ़ती हूँ, दिस एंड दैट और सब चीज़ें हैं। फिर मैंने और पूछा और पूछा, तहारत का इंतज़ाम है क्या, आप इस तरह तो नहीं रहती, इस तरह तो नहीं, कुरान सुनती हैं दिस। फिर आखिर बात हुई तो मैंने कहा आप बताएं आप खाती क्या है, आपके घर की इनकम क्या है। अब मैं इलाज कर रही हूँ ना आपका, एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको सच बताएंगे ना, तो बात वही निकली कि नहीं ठीक इनकम। मैंने कहा देखें आप इतनी इबादत कर रही, इतना कुछ कर रही हैं, चैन क्यों नहीं मिल रहा, सोर्स खराब है, इसको ठीक करें। हम एक खराबी रखते हैं तो दूसरी खराबी खुद ही आने लगती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुजाहिद बने तो कम से कम सिपाही तो हमें भी बनना ही पड़ेगा ना। बैक टू बेसिक, पीछे जाइए, अपने घरों में ईमान लाए, अपने दिलों में ईमान लाए, आपके रवैये आपके शौहरों को दीन की तरफ लाएंगे। शौहर आएंगे तो फिर बच्चों पे भी आएगा असर, लेकिन ख़ास तौर पे जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको तो आप बहुत ही सिंपल लिविंग पे लाए। देखिए बात एक चीज़ बदलने से नहीं होगी, पूरा सिस्टम बदलना होता है। दूसरों का नहीं, अपने घर का बदल लें, बनाइए आप अपने घर का एक माहौल, एक खास माहौल है, एक तरीका, ये मेरा जरिंग है। लोग अपने लाइफस्टाइल पे फख्र करते हैं ना, ये तो मेरा लाइफस्टाइल है, आप अपना बना लें। हाँ ये मेरा है, मैं ऐसे ही पलूंगी, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही रखूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यहाँ रह के भी, इवन जहाँ इतनी रौनक है और इतनी डिस्ट्रेक्शन है, कुछ लोगों ने बच्चों को बहुत ही ज्यादा ट्रैक पे रखा हुआ है, ना वो फालतू खाते हैं, ना वो फालतू बोलते हैं, ना बेकार चीजें देखते हैं। आज भी ऐसे घर यहाँ मौजूद है कि जहाँ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने लिए ऐसी चीजें हैं ही नहीं, और आप देखिए कि वो ज्यादा मुतमईन है। बच्चों को फजर पे उठाइए, सुबह का उनको आदी बनाइए, फजर के बाद सोने से रोकिए। ये नहुस्तें पड़ती है ना कि जिसकी वजह से कुछ नहीं करते। मैं लिटरली समर में मैं यंग लोगों को बात करके पूछती हूँ कि ओके, जो क्लास होती है यंग बच्चियों की, बच्चों की, तो मैं उनसे एक सवाल आते ही जरूर पूछती हूँ हाल चाल सलाम करने के बाद, क्योंकि आप बताओ कि लास्ट क्लास से अब तक आपने क्या किया, व्हाट यू डिड इन द होल वीक। यकीन करें आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इस जगह पे बैठी हूँ, 98 बल्कि 99% बच्चे बच्चियाँ आगे से यही कहते हैं नथिंग नथिंग। आई थिंक यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। नो वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। छोटा बच्चा, उसको मैं पूछा, मैंने कहा तुम घर में क्या करते हो, कहता है बोर। मैंने कहा यू आर वॉचिंग कार्टून्स मूवी, कहता है या बट बोर, यानी इतने एंगल बना के बता रहा था बोर। मैं कहा व्हाट योर मम्मी इज डूइंग, कहता है शी डू नथिंग। यकीन करें 4.5 साल का बच्चा है, बड़ी रौनक से कहता है शी डू नथिंग। मैं कहा व्हाट योर डैडी डूइंग, कहता है ही हैव वर्क वर्क। पता नहीं ऐसे वो बच्चे, उसकी आंखों में उदासी, बहुत ही हाइपर बच्चा और बहुत टीचर्स उससे परेशान थी। तो मैं उसके साथ ब्रेक में बैठ गई और मैं इसे प्यार से बातें, मैंने कहा देखो इसका मसला क्या है। यकीन करें मुझे बच्चा तनहा लगा और माँ बेचारी, जिस्म भी इतना उसका भारी हो चुका है और बिल्कुल वो माँ भी उससे परेशान होती है कि हाइपर है और टिकता नहीं, लेकिन उस बच्चे की आंखों में उदासी। मेरी मम्मी मुझे पार्क नहीं लेके जाती, ऑल द टाइम आई एम वॉचिंग द टीवीज। और अब उसको देख देख के बोर हो चुका है। इतना प्यारा उसका नाम है, इतनी प्यारी उसकी शक्ल है, लेकिन काम देखे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मुझे अभी किसी ने चंद दिन पहले ही सुनाई, सच्ची बात है। तो मेरे शौहर को किसी ने सुनाई, फ्लोरिडा से एक ब्रदर आते हैं, बहुत ही अच्छे, यानी अरब है, किसी काम के सिलसिले में। तो उन्होंने सुनाई कि अपने बेटे की बात सुनाते हैं कि मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे पाला पालते हैं, और ज़रा भी कोई गलत चीज़ होती है तो वो बच्चा बेचैन हो जाता है। तो इसी में एक लंबी कहानी थी जिसका खुलासा क्या है कि उनके स्कूल में एक बच्ची आई, या किसी उनके स्टोर पे एक औरत आई, अरब थी, उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। वो औरत काम करती थी उनके स्टोर पे, एक दिन वो अपनी बच्ची को भी साथ ले आई। तो इन्होंने पूछा कि बच्ची का नाम क्या है ना, तो बच्ची का नाम था जन्ना, जन्नत नाम था बच्ची का। तो खैर वो कभी कभी आती। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची को लेके जब साथ आई तो उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। तो ये ब्रदर बताने लगे कि मेरे बच्चे ने जब उस छोटी बच्ची को देखा तो भाग के छुप के आके ना तो ऑफिस में छुप गया। बाबा बाबा बाबा, कहने के मैं परेशान हुआ कि क्या हुआ। मैंने पूछा बेटा व्हाट्स रॉन्ग, तो कहेगा बाबा लुक एट व्हाट काइंड ऑफ द जन्ना इज दिस, कि ये बच्ची कैसी जन्नत है। कहते मुझे डर लग रहा है इसको बाहर ले जाए। उसकी माँ ने सुन ली ये बात कि ये मेरी बच्ची के ड्रेस पर, और आपने देखा है बाज़ लोग तो बहुत ही शॉर्ट्स पहनाते हैं, और कल्चर की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन अमूमन लिबास का ख्याल नहीं रखा जाता। तो कहता है कि मेरे बेटे के इस सवाल ने मुझे झंझोड़ दिया कि ये कैसी जन्नत है, किसका ये नाम है, कि लोग देखें नाम कितने प्यारे रखते हैं, काम क्या करते हैं। कहते हैं फ़ौरन उसकी माँ ने लिया उसको बच्ची को और चली गई, रुकी नहीं, काम ही नहीं किया उसने। इसमें ये भी मैं भूल गई, जब ये बातें हो रही थी तो वो बच्ची भी रोने लगी इनकी बातें सुन के, कि मेरे बारे में ये बात हो रही। बच्ची जोर जोर से रो के चीख के कहने लगी कि मम्मी आई टोल्ड यू आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस ड्रेस, वाई यू गिव मी दिस। अगर कोई डायरेक्ट सुनाए जिसने सुनी होती है तो ज्यादा अच्छी, लेकिन मफहूम यही था कि बच्ची भी कह रही है कि मुझे नहीं पहनना, बच्चा भी छोटा देख के रो रहा है, और वो माँ ने पहनाया हुआ था। यकीन करें हमारा हाल क्या है, यानी 4-5 साल की बच्ची को अगर आप हिप्स तक के स्कर्ट्स पहने हुए देखें कि पूरी पूरी टांगे उनकी नंगी हैं, हया क्यों नहीं आती। ये बच्चे कहाँ दीन का इजहार करेंगे, और इनका दीन कहाँ है, दीन के नाम पे भी क्या पेश किया जाता है। अगर हम लोगों ने अपने अपने घरों को नहीं संभाला तो बात बड़ी दूर जाएगी, और जा रही है, बेचैनियां हैं और परेशानी है। तो इसके लिए ये कि आप अल्लाह से मदद मांगे, पहली चीज़ है खुद मदद मांगे, सहरियों को उठें, जैसे हजरत याकूब ने अपने बच्चों के लिए दुआएं की थी, आप भी उसकी कोशिश करें। और फिर अमली तौर पे वो चीज़ है कि हर वो चीज़ जो आपके बच्चे की सोच बदल रही है उसको घर से निकालें। ये एक पॉइजनिंग है, ये हमें लगता है ये फन है, ये दिस है। फिर मैंने उस बच्चे की माँ आई जब छुट्टी के वक्त, तो मैंने उसको बुला लिया अंदर, मैंने कहा बैठो बात करो। अब वो बड़ी फील कर रही थी, उसको पता था कि बच्चा हाइपर है, इसने कोई गड़बड़ की होगी, लेकिन मैंने उसको कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन आई फील कि ही फील लोनलीनेस, तुम इसको टाइम दो, इसको कंपनी दो, लाइक दिस और दैट, और ये क्या खाता है क्या पीता है, इसका खाने का ख्याल रखो। यकीन करें कि मुझे रोना आता है कि इतने प्यारे बच्चे और इतनी नासमझ किस्म की तरबियत हो रही है, बिगड़ जाते हैं बच्चे, फिर नाकाबिले बर्दाश्त है। और माँ का रवैया हमें बता रहा था कि बच्चे की वजह क्या है, जब माँ इतनी हाइपर होंगी या माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती बच्चे को तो फिर वो क्या होगा। आप बच्चे की हर बात माने, आप उसको हर रोज मैकडोनल्ड ले जाएं, हर रोज बर्गर खिलाएं, उसको रोज आइसक्रीम खिलाएं, आप उसको चकी चीज ले जाएं, आप क्या दिखा रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। वो कहती है मैं इसको इतना कुछ इतनी जगहों पे ले जाती हूँ, ये खुश नहीं होता, ही इज अनथैंकफुल, कि ये कहने लगी कि ये खुश नहीं होता। मैंने सोचा 3-4 साल के बच्चे को इतनी समझ कहाँ से आ सकती है कि मैंने किस चीज़ पे खुश होना है किस पे नहीं। तो बहरहाल ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप देखिए कि इन सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ते हुए हमारे दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे बच्चे भी ऐसे हों, क्योंकि आज तो इस ख्वाहिश से भी डरते हैं। और सच बात है ये कि लोग आज डरते हैं ऐसी बातें भी बच्चों को कहते हुए कि कहीं हमारा नाम के साथ कोई ठप्पा ना लग जाए और कुछ हमारे बच्चे जोश में ना आ जाए। मुझे तो लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आता है और बच्चे जाना चाहेंगे तो पीछे से कपड़े खींचने वाली हैं माएँ होंगी कि खुदा के लिए तुम ना जाओ। डरती हैं आज माएँ इसी चीज़ से कि बच्चे कहीं दीन के रास्ते में लग जाए और करें। इंशाल्लाह ये किताब जब ख़त्म होगी तो इसके बाद हम फिर सहाबियात की या ऐसी माओं की कहानियाँ पढ़ेंगे कि जो माएँ बच्चों को मुजाहिदाना सोच देती थी। लेकिन हम महसूस करते हैं ना कि कहानियों से भी कितना इल्म लिया जाता है। ये किताब अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे वाकई हमें अमली किरदार मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके ये इस्लाम पहुँचा, कहाँ से हमने इन चीज़ों को हासिल किया, और आज कितने आराम से मुसलमानों के इलाके हम छुड़वा रहे हैं, हम मुसलमानों के मुल्कों को दूसरों को दे रहे हैं। नाम हमारा है, काम दूसरे कर रहे हैं, इशारों पे नाच रहे हैं। ये बातें जुबान पे आती हैं तो मुश्किल लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन सच तो वही है जो हो रहा है। तो अल्लाह ताला तौफीक दे हमें। जो इंग्लिश में इसे मिलती जुलती है, कमांडर्स ऑफ आर्मी, आप उसको बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों को खुद पढ़ने दें ऐसी कहानियाँ, आप ना कहें खुद पढ़ने दें, इंशाल्लाह आप देखिए कि ज़्यादा असर होगा। चलिए जी, यहाँ पे रुकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया सबक हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।